ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा मध्येश प्रदेश सभा का संबोधन। गणतंत्र को संस्थागत बनाने और जनता के जीवन स्तर सुधारने के लिए तीनों तहों की सरकारों को मिलकर काम करना होगा, प्रधानमंत्री ओली का कथन। नेपाल को ग्रे लिस्ट से हटाने की कार्ययोजना बनाने का संपत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशक समिति का निर्णय। आंदोलनरत शिक्षकों से वार्ता में आने का शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय का आग्रह। परसा जिले में मीटर ब्याजी के खिलाफ कार्रवाई। 71 बीघा से अधिक जमीन पीड़ितों को मिली वापस। और शनिवार को ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच होगी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र को संस्थागत बनाने और जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए तीनों तहों की सरकारों को मिलकर काम करना होगा। आज मध्येश प्रदेश सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि संघ प्रदेश और स्थानीय तहों की सरकारों को सामाजिक न्याय और सुशासन को केंद्र में रखकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र देश का वर्तमान और भविष्य है, इसलिए इसे और मजबूत बनाने के लिए संविधान में आवश्यक सुधार और संशोधन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघीयता जनता के बड़े त्याग और बलिदान से प्राप्त व्यवस्था है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए सभी को योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि अगर जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव नहीं लाया गया तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि सुशासन और विकास के माध्यम से उठे सवालों का जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मध्येश प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए सरकार सुवर्णकोशी मरीन डायवर्जन से सिंचाई सुविधा पहुंचाने, हुलाकी राजमार्ग का स्तर उन्नति करने जैसी बहुआयामिक योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधार के लिए बाल विवाह, बोक्सी प्रथा, दहेज प्रथा, महिला हिंसा जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए प्रदेश सभा को विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मध्येश प्रदेश में आम, मछली सहित अन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। सरकार ने आंदोलनरत शिक्षकों को कल वार्ता के लिए बुलाया है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय ने नेपाल शिक्षक महासंघ को बुधवार को मंत्रालय में वार्ता के लिए बुलाया है। मंत्रालय के प्रवक्ता एवं सह सचिव शिव कुमार सापकोटा ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए आंदोलनरत सभी शिक्षक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले महासंघ को वार्ता और संवाद के लिए आमंत्रित किया है। विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि वार्ता का समय आपसी सलाह मशविरे से तय किया जाएगा। नेपाल शिक्षक संघ ने विद्यालय शिक्षा संबंधी कानून में संशोधन और एकीकरण के लिए बनाए गए विधेयक 2080 को यथाशीघ्र पारित करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा है। मंत्रालय ने साझा समय बनाने के लिए आंदोलनरत शिक्षकों के साथ इससे पहले 21 और 22 को भी चर्चा और परामर्श के लिए बुलाया था, लेकिन वो बातचीत नहीं हो सकी थी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा ने संवैधानिक राजतंत्र की पुनर्स्थापना और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर आज काठमांडू के बलखू में जनसभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए राप्रपा के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन ने कहा कि उनकी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहती है जहां किसी को भी निषेध या अपमानित न किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके आंदोलन का उद्देश्य देश के सभी जिम्मेदार पक्षों को स्थान देते हुए एक नई राजनीतिक समझ विकसित करना है। पार्टी के निर्देशक समिति के अध्यक्ष डॉ प्रकाश चंद्र लोहनी ने देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों पर अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता उससे इसका हिसाब मांगेगी। पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा ने प्रमुख राजनीतिक दलों पर पूर्व राजा के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसी तरह वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामांग ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने के अधिकार की गारंटी देने की मांग सरकार से की। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने गवर्नर नियुक्ति में किसी भी अनियमितता न होने की बात कही है। मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गुरुंग ने गवर्नर नियुक्ति के संबंध में बाहर हो रही चर्चाओं को सच नहीं बताते हुए कहा कि सरकार योग्य गवर्नर नियुक्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की ग्रे सूची से हटाकर आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही संचार मंत्री गुरुंग ने स्पष्ट किया कि गवर्नर की नियुक्ति में सरकार कोई देरी नहीं करेगी। इसी बीच कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बागेश्वर गांवपालिका डरेलधुरा के केंद्रीय वार्ड नंबर 4 बगरकोट से परिवर्तन कर टोप्पा स्थापित करने, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति के खाली कार्यकारी निदेशक पद पर ललितपुर के मोहन कुमार तामांग को नियुक्त करने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक ने वैकल्पिक वित्त परिचालन से संबंधित व्यवस्था करने के लिए बनाए गए विधेयक को संघीय संसद के समक्ष पेश करने की स्वीकृति दी। साथ ही नागरिक ऐप संचालन तथा प्रबंधन निर्देशिका 2078 को खारिज करने का निर्णय किया। इसके अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भाग लेने के लिए मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को स्वीकृति प्रदान की गई। आप रेडियो नेपाल से हिन्दी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। परसल जिले में मीटर ब्याजियों विरुद्ध हुई कार्रवाई में 71 बीघा से अधिक जमीन पीड़ितों को वापस मिली है। बता दें कि कर्ज देने वालों का 65 करोड़ रुपए का दावा था, जिसमें 32 करोड़ 30 लाख से अधिक रुपए का मामला समझौते में निपटने से पीड़ितों को राहत मिली है। जिला प्रहरी कार्यालय के मुताबिक जिला प्रशासन में भी दर्ज शिकायतों समेत कुल 2221 शिकायतों में से 1335 शिकायतों का निराकरण हो चुका है और ये समझौते जिला प्रशासन और जिला प्रहरी ने अपने अपने स्तर से करवाए हैं। सरकार विदेशी समुद्रों में नेपाली ध्वज वाहक जहाज संचालन की तैयारी में है। राष्ट्रीय सभा की विधायन व्यवस्थापन समिति में पानी जहाज विधेयक पर धारागत बहस के दौरान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दहाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत सहित अन्य देशों के समुद्रों में जहाज संचालन के लिए सरकार ने विधेयक तैयार किया है। उन्होंने साफ किया कि नेपाली नदियों में चल रहे मोटर बोट्स का नियमन करने और नेपाल के जहाज को विदेशी समुद्रों में चलाने के लिए कानूनी व्यवस्था की जा रही है। हुमला की नाफखा गांवपालिका में 39 हिम चीते पाए गए हैं। कैमरा टैपिंग तकनीक से सन 2022 से 23 तक हिम चीतों की गणना की गई। इसमें कम से कम 39 हिम चीतों के मौजूद होने की बात सामने आई है। ये जानकारी सहायक वन अधिकृत बाबूलाल बमजन ने दी। हिम चीतों के अनुसंधानकर्ता रिंजिम फुंजोक लामा ने कहा कि नामखा क्षेत्र में 61 कैमरे लगाकर अध्ययन किया गया था। बता दें कि सरकार ने सन 2024 से 30 तक हिमचीतों की गणना और संरक्षण को प्राथमिकता में रखा है। ओखलढुंगा की मोलुंग गांवपालिका ने निर्णय किया है कि जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी और सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से सामुदायिक विद्यालय में ही पढ़ाएंगे। सामुदायिक विद्यालयों के शैक्षिक स्तर सुधारने के उद्देश्य के साथ पालिका ने यह निर्णय किया है, जो कि शैक्षिक सत्र 2082-33 तक लागू किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शनिवार को ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण वार्ता होने जा रही है। ये वार्ता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल आ रहे तनाव को कम करने और 2015 के परमाणु समझौतों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की चिंताओं को दूर करना तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ ईरान के संबंधों में सुधार लाना है। साथ ही ये वार्ता तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी केंद्रित होगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मध्य प्रदेश सभा का सम्बोधन, गणतन्त्र को संस्थागत बनाने और जनता के जीवन स्तर सुधारने के लिए तीनों तहों की सरकारों को मिलकर काम करना होगा, प्रधानमंत्री ओली का कथन। आंदोलनरत शिक्षकों से वार्ता में आने का शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय का आग्रह। परसा जिले में मीटर ब्याजी के खिलाफ कार्रवाई, 71 बीघा से अधिक जमीन पीड़ितों को मिली वापस। और शनिवार को ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच होगी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।